गांधी के निधन पर शायद सबसे यादगार श्रद्धांजलि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की तरफ से आई थी, जिन्होंने कहा था कि उनकी हत्या बताती है कि अच्छा होना कितना खतरनाक भी हो सकता है। गांधी के बारे में एक अमरीकी पत्रकार विंस्टन शीन ने भी लिखा था, वो खादी की शाल ओढ़े हुए एक बूढ़ा शख्स ही तो था, लेकिन जब वो मरा तो सारी मानव जाति अपने आंसू नहीं रोक पाई और फूट फूट कर रोई। विंस्टन शीन दुनिया के कई अशांत क्षेत्रों की घटनाओं को कवर करते हुए 1947 में भारत पहुंचे थे और महात्मा गांधी के मुरीद बन गए थे। ये इत्तेफाक था कि जब नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी तो वो वहां से सिर्फ 10 गज की दूरी पर खड़े थे। उन्होंने न्यूयॉर्क हेरल्ड ट्रिब्यून में लिखा,
मैंने एक टैक्सी की और गांधी जी की प्रार्थना सभा से पहले ही बिरला हाउस पहुंच गया। अभी 5 नहीं बजे थे और लोग पैदल, कार और तांगों से गेट के सामने उतर रहे थे। जब मैं प्रार्थना स्थल पर पहुंचा तो वहां बीबीसी के संवाददाता बॉब स्टिमसन खड़े थे। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने बीबीसी की तरफ से गांधी को कुछ सवाल भेजे हैं, शायद गांधी आज उनका जवाब दें, इसलिए मैं प्रार्थना के बाद उनसे मिलने की कोशिश करूंगा। अचानक उनकी नज़र अपनी घड़ी पर गई और वो बोले, बहुत अजीब है कि गांधी जी को प्रार्थना सभा में पहुंचने में देरी हो गई है। हम दोनों ने फिर अपनी घड़ी की तरफ देखा, उस समय 5:12 हुए थे। तभी बॉब ने कहा, वो रहे गांधी जी। बाद में मैंने कहीं पढ़ा कि उस समय गांधी जी चप्पल पहने हुए थे, लेकिन मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दी। मुझे तो लगा कि वो नंगे पैर ठंडी घास पर चल रहे थे। तभी हमें 4 दबे हुए धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने बॉब से पूछा, ये क्या था? जैसे ही बॉब ने कहा मुझे नहीं पता, मैंने उनके चेहरे की तरफ नज़र घुमाई और वो मुझे अचानक पीला पड़ता दिखाई दिया। मेरे मुंह से निकला, नॉट महात्मा, और मुझे पता चल गया क्या हुआ था।
इस समय गोली चली, वहां 20 वर्षीय देवदत्त भी खड़े थे। उन्हें वो पूरा दृश्य अभी तक याद है जैसे वो कल की ही बात हो।
हमने देख लिया था, एक घुटा हुआ सिर वाला और फौजी ने वर्दी पहनी हुई थी, खाकी सी, और बहुत टेंस, मेरे से 3-4 आदमी छोड़ के खड़ा था। तो निकाल करके उसने पिस्तौल मारे, सामने खड़े हुए सीधे मारे, हमको समझ भी नहीं अभी क्या कर रहा है, झुका और झुकते उसने लगा दिया। तो जब ठा हुआ तो गिर गए, तो लोगों ने तो उनकी तरफ गड़े, हम उस अकेले गांधी को देख रहे थे, अकेले लेटा हुआ था, तो हमको तो उसकी बुझती आंखें ही रोलिंग आईज। उसके बाद फिर चल पड़े, वो 30 जनवरी मार्ग से पैदल फिर वापस यूनिवर्सिटी गए। हम फिर जब निकले हैं तो हमने बियाबान देखा, दिल्ली की सड़कों पर कोई नहीं, खाली हो गई थी, ढाबे बंद हो गए थे, तब हमको पता लगा कि ये कौन था।
इस बीच बदहवास बीबीसी संवाददाता बॉब स्टिमसन टेलीफोन की तलाश में बाहर भागे। थोड़ी देर बाद बीबीसी पर उनकी आवाज सुनाई दी।
At 3:05 Indian time, Mr. Gandhi came out of Birla House.
उस समय भारत के वॉयसराय लॉर्ड माउंटबेटन की 18 साल की बेटी पॉमेला माउंटबेटन गवर्नमेंट हाउस के अपने बेडरूम में तैयार हो रही थी। तभी उन्होंने रेडियो पर गांधी की हत्या की खबर सुनी।
I remember being in my bedroom and with the radio turned on and hearing this unbelievable news that Gandhi ji had been assassinated.
मुझे याद है, मैं अपने बेडरूम में तैयार हो रही थी, तभी मुझे रेडियो पर गांधी की हत्या की अविश्वसनीय खबर सुनाई दी। अचानक मैंने पाया कि मेरी आंखों से आंसू बह निकले, जैसे मेरे परिवार का कोई बहुत ही करीबी शख्स इस दुनिया से चला गया हो।
उधर कुछ ही दिनों पहले पत्रकारिता में अपने करियर की शुरुआत कर चुके कुलदीप नैयर अपने अखबार अंजाम के दफ्तर में बैठे हुए थे।
उन दिनों में ये जो टेलीप्रिंटर है, अब तो खैर टेलीप्रिंटर रहे भी नहीं, जो है उस वक्त कोई अगर बहुत ज़रूरी खबर होती तो घंटी बजती थी, तो घंटी बजी तो मैं एकदम वहाँ पहुँचा, तो उसमें था गांधी शॉट एट, वो इतना ही था। तो मैंने किसी से कहा भाई मुझे तो बिरला हाउस में छोड़ दो, तो आदमी मुझे छोड़ गया बिरला हाउस में, कोई कुलीग ही था, उसके पास मोटरसाइकिल था। उस वक्त मैंने पंडित नेहरू को देखा, सरदार पटेल को देखा, मौलाना आज़ाद कुर्सी पर बैठे गम में डूबे हुए। उस वक्त गवर्नर जनरल माउंटबेटन नहीं आए थे, मेरे होते ही आए, तो उन्होंने खैर बॉडी को सैल्यूट तो किया, तो महसूस किया मैंने कि आज हिस्ट्री यहीं पे फूट रही है। महसूस किया कि आज अपने सिर पे से कोई हाथ रखने वाला नहीं है। बापू एक हमारे सबके गम भी रिप्रेजेंट करते थे, हमारी खुशियाँ, हमारी एस्पिरेशंस, हमारी सोच, सब कुछ वही तो थे।
पामेला माउंटबेटन कहती हैं कि करोड़ों भारतवासियों की तरह उन्हें भी लगा कि उनके परिवार का कोई सदस्य इस दुनिया से चला गया है।
Literally, India came to a standstill. Eventually, my father dashed down to Birlahouse, and as he arrived, one in the crowd called out, "It was Muslim did it."
जैसे ही ये खबर फैली लगा कि पूरा भारत जैसे रुक गया हो। मेरे पिता तुरंत बिरला हाउस पहुंचे। जैसे ही वो कार से उतरे, भीड़ में किसी ने चिल्लाया, मुसलमान ने गांधी को मारा। मेरे पिता ने तपाक से जवाब दिया, यू फूल, इट वॉज अ हिंदू। वास्तव में उस समय तक किसी को पता नहीं था कि हत्यारा कौन था, लेकिन मेरे पिता को लगा कि भारत में खून खराबा बचाना है तो यही सबसे उचित जवाब है।
किसी ने माउंटबेटन के हाथों में गुलाब की कुछ पंखुड़ियां पकड़ा दी। उन्होंने नीचे पड़े गांधी के पार्थिव शरीर पर उन पंखुड़ियों को बिखेर दिया। ये उस शख्स को भारत के आखिरी वायसराय की अंतिम श्रद्धांजलि थी जिसने उनकी पर नानी के साम्राज्य का अंत किया था। इसके बाद माउंटबेटन नेहरू की तरफ मुड़कर बोले थे, तुम्हें देश को संबोधित करना है। नेहरू ने कहा, मैं नहीं कर सकता, मेरी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगा। माउंटबेटन ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, परेशान मत हो, ईश्वर तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें क्या कहना है। ब्रॉडकास्टिंग हाउस जाते समय नेहरू की आंखों में आंसू बह रहे थे। उनके सचिव मथाई ने किसी चीज की ओर उनका ध्यान दिलाना चाहा। नेहरू ने इशारे से उन्हें रोक दिया। वो गहन चिंतन में थे। कुछ मिनटों बाद जब ब्रॉडकास्टिंग हाउस के स्टूडियो नंबर 1 की हरी बत्ती जली तो नेहरू के शब्द उनके दिल से निकले।
फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स, द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स and there is darkness everywhere, and I do not quite know what to tell you and how to say it. Our beloved leader, Bapu as we called him, the father of the nation, is no more.
दोस्तों और साथियों, हमारे जीवन से एक रोशनी चली गई और अब चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्यारे नेता, हमारे देश के राष्ट्रपिता, जिन्हें हम बापू कह के पुकारते थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैंने कहा रोशनी चली गई, लेकिन मैं गलत था, क्योंकि जो रोशनी इस देश में चमकी थी कोई मामूली रोशनी नहीं थी। हजारों साल बाद भी ये रोशनी बरकरार रहेगी और हजारों लोगों को ढांढस बंधाएगी।
गांधी के पार्थिव शरीर को बिरला हाउस की बालकनी पर रखा गया था।
And we went down to pay our respects. And I thought, there's something wrong. On the bier, lying there on the bier. I thought, it doesn't look like Gandhiji.
हम सब गांधी के अंतिम दर्शन के लिए बिरला हाउस गए। मुझे लगा कि वो गांधी नहीं हैं जिनसे हम बातें किया करते थे। उनका चेहरा जाना पहचाना नहीं था। तभी मैंने नोट किया कि उनके चेहरे पर उनका चश्मा नहीं था और बिना चश्मे के वो बहुत कमजोर और दुबले दिखाई दे रहे थे।
Because he distrusted machines, 50 servicemen pulled Gandhi's cortege, on which sit two of his sons.
जब बिरला हाउस से गांधी की शव यात्रा शुरू हुई तो लगा कि सारी मानव जाति दिल्ली की धरती पर उतर आई हो। मंत्री, कुली, महाराजा, दलित, गवर्नर, पर्दानशी मुस्लिम औरतें, हर जाति, वर्ग, धर्म और चमड़ी के लोग अपने रंज का इजहार करते हुए उस शव यात्रा में आगे बढ़े। जब मशहूर फोटोग्राफर मार्गरेट बुर्के वाइट ने अपने लाइका लेंस से उस असाधारण दृश्य की तस्वीर ली तो उनके मन में आया कि वो इस दुनिया में अब तक जमा सबसे बड़ी भीड़ को अपने कैमरे में कैद कर रही हैं।
But it was going sort of 9 or 10 miles.
यमुना के तट पर जहां गांधी का अंतिम संस्कार होना था, बिरला हाउस से 9-10 किलोमीटर का रास्ता था। शव यात्रा को वहां पहुंचने में 5 घंटे लग गए। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मेरे पिता को लगा कि अगर उस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो वो गांधी के पार्थिव शव के पास मौजूद लोगों को गांधी की चिता में धक्का दे देंगे। उन्होंने आदेश दिया कि सभी वीआईपी कीचड़ से सनी जमीन पर पालथी मारकर बैठ जाएं। लोगों के सामने उदाहरण पेश करने के लिए वो अपनी नीली साफ वर्दी पहने ही कीचड़ में बैठ गए और उनकी देखा देखी मैं और मेरी माँ भी जमीन पर बैठ गए।
उस समय 4 बज रहे थे और जल्दी इसलिए थी कि सूरज डूबने से पहले गांधी की चिता को अग्नि दी जानी थी।
Now as the flames begin to lick, a roar goes up from the crowds. Now the fire is caught. More pieces of sandal wood are being placed. Garlands being flung into the air. Policemen's sticks being raised to try and keep the crowds down. We're trying to move in closer to get a last glimpse of the father of our nation.
Some old village women brought up the idea of sati, you know, when widows throw themselves in the flames of their husbands.
जैसे ही गांधी के बेटे रामदास ने गांधी की चिता को अग्नि दी, कुछ ग्रामीण औरतें विलाप करते हुए सती होने की कोशिश में चिता की ओर दौड़ी। उन्हें बड़ी मुश्किल से रोका गया। जैसे ही चिता की लपटें उठी, लोगों के मुंह से बेसाख्ता निकला, गांधी जी अमर रहें, गांधी जी अमर रहें।
Picked out the bones from the heap of ash and placed them in a brass pitcher containing Ganges water, milk, honey, curds, butter, sandalwood and saffron. Also in the pitcher were a ruby, a sapphire, an emerald, a piece of gold and a piece of silver. While the bones were being recovered, a fragment of one of the bullets that killed Mr. Gandhi was found. It was handed to Mr. Nehru, whose hand shook as he received it.
पूरी रात गांधी की चिता पर सिर झुकाने वालों का तांता लगा रहा। जैसे ही भोर हुई, शोक में डूबे जवाहरलाल नेहरू ने गांधी की जल चुकी अस्थियों पर गुलाब के फूलों का एक गुच्छा रखा। उनके मुंह से निकला, बापू, आज तो मैं आपकी अस्थियों और राख के सामने श्रद्धा सुमन अर्पित कर पा रहा हूं, लेकिन कल मैं ये फूल कहां दूंगा और किसको?
ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान।
ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान।
रघुपति राघव राजा।
रेहान फजल, BBC, दिल्ली।